रात उतर चुकी थी। श्यामली के घर के बाहर की हलचल अब धीरे धीरे शांत हो गई थी, लेकिन अंदर हाल में तूफान खड़ा था। पूरा परिवार एक जगह जमा था। माँ सोफे के किनारे बैठी थीं, चेहरा घबराया हुआ। वेद आगे खड़े थे, आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। विवान दीवार से टिके लेकिन पूरी तरह अलर्ट। आरती तो जैसे फटने को तैयार थीं। और सामने सुधीर और उसका भाई मनोज। कमरे में भारी खामोशी थी, जिसे तोड़ा मनोज ने। उसने एक लंबी सांस ली, फिर ठंडे लेकिन सख्त लहजे में बोला, तुम लोगों की वजह से आज मेरे भाई की पूरे मोहल्ले में बेइज्जती हुई है। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन हर शब्द में दबा हुआ गुस्सा साफ सुनाई दे रहा था। इसलिए तुम सबको ये घर छोड़ना होगा। एक सेकंड के लिए जैसे वक्त रुक गया, अभी के अभी। ये शब्द गिरते ही कमरे का माहौल फट पड़ा। क्या बकवास कर रहे हो तुम, वेद गुस्से में आगे बढ़े। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा, विवान भी अब सीधा खड़ा हो गया। लेकिन सबसे तेज प्रतिक्रिया आई आरती की, अबे ओ जुबान संभाल के बात कर। वो सीधी मनोज के सामने आ खड़ी हुई। तेरे भाई की करतूतें देखी हैं हमने, और उल्टा हमें घर से निकाल रहा है, उनकी आवाज़ गूंज उठी। बेइज्जती उसने खुद करवाई है अपनी, समझा। मनोज का चेहरा सख्त हो गया। जो भी हो ये घर हमारा है। तो क्या हुआ, आरती ने तुरंत पलटकर कहा। रात के टाइम हम सब कहाँ जाएंगे, सड़क पर सोएंगे क्या? माँ की आंखों में अब आंसू आ गए थे। मनोज जी सुबह तक रुकने दे दो, उन्होंने धीरे से कहा। लेकिन मनोज टस से मस नहीं हुआ। नहीं अभी निकलो, कमरे में फिर शोर बढ़ने लगा। हम नहीं जाएंगे, देखते हैं कौन निकालता है, हद हो गई है ये, वेद ने साफ कह दिया। हम कहीं नहीं जा रहे, जो करना है कर लो। एक पल के लिए सुधीर चुप खड़ा सब देखता रहा। उसका चेहरा अब पहले जैसा टूटा हुआ नहीं था, बल्कि धीरे धीरे फिर वही असली रंग उभरने लगा था। उसने हल्का सा मुस्कुराया और फिर एक कदम आगे बढ़ा। ठीक है, उसने शांत लेकिन खतरनाक आवाज में कहा। अगर तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, वो जेब से फोन निकालते हुए बोला, तो मैं अभी अपने लोगों को बुला लेता हूँ। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। क्या मतलब, विवान ने आंखें सिकोड़ कर पूछा। सुधीर ने फोन घुमाते हुए कहा, मतलब समझदार को इशारा काफी होता है। उसकी आवाज़ अब पूरी तरह बदल चुकी थी, ना कोई पागलपन ना कोई कमजोरी, सिर्फ सीधी धमकी। माँ डर गई, श्रुति और नैना एक दूसरे को देखने लगी। वातावरण अचानक और खतरनाक हो गया। तभी बस, श्यामली की आवाज़ आई। सबकी नज़रें उसकी तरफ मुड़ गईं। वो अब तक चुप थी, लेकिन अब आगे बढ़ी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में गहराई थी। वो धीरे धीरे सबके बीच आई और बोली, हम यहाँ और नहीं रुकेंगे। क्या, आरती ने तुरंत कहा, पागल हो गई हो क्या, हम क्यों जाएं? श्यामली ने उनकी तरफ देखा। क्योंकि ये लोग अब किसी भी हद तक जा सकते हैं, उसने एक पल के लिए सुधीर की तरफ देखा, फिर बोली, और मैं नहीं चाहती कि बात और बिगड़े। विवान ने उसकी आंखों में देखा, उसे समझ आ गया, ये पीछे हटना नहीं है, ये चाल है। उसने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, वेद ने गहरी सांस ली, फिर बोले, चलो सामान पैक करो। आरती अब भी गुस्से में थी, लेकिन मौसी, श्यामली ने धीरे से कहा, प्लीज। उस एक शब्द में इतना भरोसा था कि आरती चुप हो गई। धीरे धीरे सब लोग अपने अपने कमरे में गए। सामान समेटने की आवाज़ें आने लगीं, बैग कपड़े जरूरी चीज़ें। माँ चुपचाप आंसू पोंछते हुए चीज़ें रख रही थी। श्रुति और नैना एक दूसरे की मदद कर रही थी। विवान बीच बीच में दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे हर मूव को नोट कर रहा हो। करीब आधे घंटे बाद पूरा परिवार हाल में वापस आ गया। सबके हाथों में बैग थे। घर अब खाली लगने लगा था। श्यामली ने एक आखिरी बार चारों तरफ नजर डाली। दीवारें, सामान, वो जगह जहां वो हंसी थी, सब कुछ एक पल में पीछे छूट रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर कोई कमजोरी नहीं थी। वो मुड़ी और बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। एक एक करके सब उसके पीछे निकल गए। सुधीर दरवाजे के पास खड़ा था, उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे लगा हो जीत गया। मनोज भी चुपचाप खड़ा रहा। दरवाजा बंद हुआ, घर खाली हो गया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। उसी वक्त घर की एक खिड़की के बाहर अंधेरे में एक साया खड़ा था, एक आदमी जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया। वो काफी देर से सब देख रहा था, हर झगड़ा, हर बात, हर फैसला। उसने धीरे से अपना फोन निकाला और किसी नंबर पर कॉल मिलाया। हाँ, उसने धीमी आवाज में कहा, मकान मालिक और उसका भाई बहुत बदमाश है। थोड़ा रुका, फिर बोला, अब अगला कदम शुरू करें? दूसरी तरफ से क्या जवाब आया वो सुनाई नहीं दिया, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ठीक है, आगे का इंतजार करो। कॉल तुरंत कट गई। उधर एक शांत आलीशान ऑफिस के अंदर, कांच की दीवारों वाला बड़ा केबिन, बाहर फैला शहर और उसकी चमकती रोशनी। महिला ने फोन नीचे किया और बिना कोई भाव बदले सामने खड़ी रही। उसके सामने विश्वनाथ अपनी कुर्सी पर बैठा था,
खिड़की की तरफ मुंह किए, हाथ में सिगार। वो धीरे धीरे कश ले रहा था, धुआं हवा में घुल रहा था। सर, उन्हें मकान मालिक ने घर से निकाल दिया, महिला ने सीधी आवाज में कहा। विश्वनाथ ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, ना कोई सवाल ना कोई प्रतिक्रिया, बस एक और कश लिया और धुआं बाहर छोड़ दिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। केबिन में सन्नाटा और गहरा हो गया। महिला वहीं खड़ी रही, बिना हिले बिना कुछ बोले। विश्वनाथ अब भी खिड़की के पास शहर को देख रहा था। उसकी उंगलियों में सिगार बेहद सलीके से थमी हुई थी, जैसे हर चीज उसके कंट्रोल में हो। उसने हल्का सा सिर झुकाया, राख एस्ट्री में गिराई, एक धीमा ठहरा हुआ कश लिया। ना जल्दबाजी ना उत्सुकता, जैसे ये सब उसके लिए नया नहीं, सिर्फ एक और चाल हो। उसकी आंखें बाहर थीं पर दिमाग कहीं और उस खामोशी में उसका रुतबा साफ महसूस हो रहा था।